ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। देश में आज 378 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। कुल संक्रमितों की संख्या 22,592 हुई। नेपाल स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद करेगी कोविड-19 का आनुवांशिक अध्ययन। आज रात से अगले 3 दिनों तक मॉनसून फिर होगा सक्रिय। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने सावधानी अपनाने का किया अनुरोध। और भारतीय राज्य केरल के कोझिकोड हवाई अड्डे पर हुई हवाई दुर्घटना में मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 18। अब समाचार विस्तार से। आज देश में 378 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ जागेश्वर गौतम ने ये जानकारी दी। संक्रमितों में काठमांडू में 56, भक्तपुर में 3 और ललितपुर में 3 लोग शामिल हैं। साथ ही आज 499 लोग संक्रमण मुक्त होकर घर लौटे हैं। वहीं आज काठमांडू, परसा और मोरंग में कुल 3 लोगों की संक्रमण के कारण मृत्यु हुई है। इसके साथ ही संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 73 हो गई है। नेपाल स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद ने नेपाल में कोविड-19 का आनुवांशिक जीन सीक्वेंसिंग का अध्ययन शुरू किया है। कोविड-19 का जीन कितना शक्तिशाली है, इसका अध्ययन करने के लिए 15 लोगों का स्वाब संकलन किया गया है। इसकी जानकारी परिषद के कार्यकारी निदेशक डॉ प्रदीप गिवाली ने दी। बता दें कि विश्व में सभी देश अपने अपने देशों में फैले कोरोना वायरस की जीन सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। वहीं नेपाली वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार अनुसंधान शुरू किया जा रहा है। वीरगंज स्थित नारायणी अस्पताल में किए गए पीसीआर परीक्षण में परसा की बहुदरामाई नगरपालिका के प्रमुख नितेंद्र शाह सहित 54 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर वीरगंज महानगरपालिका ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और एक घर एक पीसीआर परीक्षण अभियान की शुरुआत की है। साथ ही संकट व्यवस्थापन केंद्र ने आज से 281 शैया वाले 4 सामुदायिक आइसोलेशन सेंटरों को एक साथ शुरू किया है। परसा में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर वीरगंज की होटलों और धर्मशालाओं को सामुदायिक सेंटर बनाया गया है। ये जानकारी परसा के प्रमुख जिला अधिकारी विष्णु प्रसाद कार्की ने दी। कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन ब दिन बढ़ने के कारण नेपालगंज उपमहानगरपालिका के 4 नाकों को सील किया जा रहा है। बांके के प्रमुख जिला अधिकारी राम बहादुर कुरुमांग की अध्यक्षता में जिला कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र की बीती रात हुई बैठक ने ये निर्णय किया था। निर्णय के अनुसार आज रात 12 बजे से श्रावण 27 गते रात 12 बजे तक नेपालगंज उपमहानगरपालिका के 4 नाकों को सील किया जाएगा। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के कारण काठमांडू नगरपालिका वार्ड नंबर 5 स्थित कोटाल मोहल्ले को सील किया गया है। कुछ दिन पहले किए गए परीक्षण में एक प्रहरी और उनके परिवार के 5 लोगों समेत मकान मालिक और समुदाय के अन्य 6 लोगों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद मोहल्ले को सील किया गया है। ये जानकारी वार्ड अध्यक्ष रमेश डंगोल ने दी। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए मकवानपुर जिले में बाहर से आने वाले आगमन में पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है। ये जानकारी मकवानपुर के प्रमुख जिला अधिकारी दीपक राज नेपाल ने दी। इसके साथ ही मकवानपुर में काम करने के लिए दूसरे जिलों से आने वाले श्रमिकों पर भी श्रावण 32 गते तक के लिए रोक लगाई गई है। सरकार ने कोरोना महामारी के कारण विदेशों में फंसे 45,000 से ज्यादा नेपाली नागरिकों का उद्धार किया है। कोविड-19 के कारण विश्वव्यापी रूप में उत्पन्न असहज परिस्थिति की वजह से सरकार ने 58 देशों से अब तक 45,662 नेपालियों का उद्धार किया है। इसकी जानकारी संकट व्यवस्थापन केंद्र ने दी है। इटहरी अस्पताल होम्स आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना संक्रमितों को सेवा ऑनलाइन के जरिए सेवा मुहैया करा रही है। बता दें कि उन संक्रमितों में वैसे लोग हैं जिनमें कोरोना का लक्षण दिखाई नहीं देता है। अस्पताल में बेड का अभाव होने के कारण इटहरी क्षेत्र में घर में ही होम आइसोलेशन में रहे संक्रमितों को वीडियो कॉल द्वारा स्वास्थ्य सेवा देने की शुरुआत की गई है। ये जानकारी अस्पताल के निमित्त मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ मनीष कुमार शर्मा ने दी। इटहरी में फिलहाल 6 लोग होम आइसोलेशन में हैं। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय है व्यापारिक विश्राम का।
ल्यान्डलाइन फोन मा समस्या छ।
1498 मा फोन गर्नुस्।
समस्या पोस्टपेन मा नि आयो।
1498 मा फोन गर्नुस्।
ओहो समझे, प्रिपेड को पुक नम्बर पनि चाहिए थियो,
त्यसको लागि पनि 1498 मा फोन गर्नुस्।
नेपाल टेलिकम को जीएसएम सीडीएमए मोबाइल तथा ल्यान्डलाइन मा कुनै पनि समस्या आएमा जे जे सोध्न मन छ 1498 मा फोन गरेर सोध्नुहोस्। यो नम्बर मा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। बागमती प्रदेश सरकार को चीन की तिब्बत सरकार ने करीब 13 करोड़ रुपए बराबर की स्वास्थ्य सामग्री सहायक स्वरूप मुहैया कराई है। बागमती प्रदेश के रसुआ जिला स्थित रसुआगढ़ी नाके में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच तिब्बत सरकार ने वेंटिलेटर लगायत स्वास्थ्य सामग्री हस्तांतरित की। रूपनदेही में कार हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। रोहिणी गांव पालिका 4 की छिपाड़गढ़ स्थित हुलाकी सड़क खंड में कार हादसे में रूपनदेही आमसतिया गांव पालिका 3 के 27 वर्षीय देवेंद्र चौधरी, कोठीमाई गांव पालिका वड़ा नंबर 3 मर्यादपुर के 28 वर्षीय नौसाद दर्जी और नवलपरासी रामग्राम नगर पालिका वार्ड नंबर 12 पथगावा के 12 वर्षीय प्रदीप ठाकुर की हुई मौत की जानकारी ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय बुटवल के प्रवक्ता दिल्ली रमन पांडे ने दी। बीती रात हुई बारिश के कारण आई बाढ़ से बाजुरा जिला मुख्यालय के बाहर जाने वाली सड़क अवरुद्ध बनी हुई है। बाढ़ में सड़क ढह जाने के बाद साफे मारतड़ी सड़क खंड की यातायात सेवा अवरुद्ध हुई है। इसी तरह गोरखा की गंडकी गांव पालिका 8, मले ओडार के बेनीघाट आरूघाट सड़क खंड भूस्खलन के कारण अवरुद्ध है। आज सुबह आए भूस्खलन से सड़क के पूरी तरह अवरुद्ध होने की जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय गोरखा के सब इंस्पेक्टर वासुदेव खतीवड़ा ने दी। आज रात से अगले 3 दिनों तक मॉनसून के सक्रिय होने के कारण देश के कई स्थानों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसमविद शांति कणेल ने बताया कि मॉनसूनी रेखा नेपाल में अधिक दिनों तक मौजूद होने के कारण ज्यादा बारिश हुई है। उन्होंने बताया अगले 3 दिनों तक देश के कुछ स्थानों में हल्की व मध्यम, कुछ स्थानों में बारिश हो सकती है। मोरंग की विराटनगर महानगर पालिका वार्ड नंबर 16 दरिया से 23,71,000 रूपये बराबर के सोना सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सशस्त्र प्रहरी की टोली ने विराटनगर महानगर पालिका 17 के 55 वर्षीय शेमपेन गुप्ता को सोना सहित गिरफ्तार किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग। बीती रात भारतीय राज्य केरल के कोझिकोड हवाई अड्डे पर हुए हवाई दुर्घटना में मरने वालों की तादाद बढ़कर 18 हो गई है। आज एक और घायल व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों का कुल आंकड़ा 18 हो चुका है। हादसे में 2 पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई है। वहीं केबिन क्रू के 4 सदस्य सुरक्षित बताए जा रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन आज एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि हादसे में मारे गए 18 लोगों में से 7 महिलाएं, 7 पुरुष और 4 बच्चे हैं। ये विमान दुबई से आ रहा था। विमान में चालक दल के सदस्यों समेत 190 लोग सवार थे। यात्रियों में 10 बच्चे और चालक दल के 4 सदस्य शामिल थे। वहीं दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,96,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 1,26,15,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 7,25,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.4 और न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। देश में आज 378 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। कुल संक्रमितों की संख्या 22,592 हुई। नेपाल स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद करेगी कोविड-19 का आनुवांशिक अध्ययन। आज रात से अगले 3 दिनों तक मॉनसून फिर होगा सक्रिय। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने सावधानी अपनाने का किया अनुरोध। और भारतीय राज्य केरल के कोझिकोड हवाई अड्डे पर हुई हवाई दुर्घटना में मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 18। इसी के साथ मुझे अनुमति दीजिए, सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभ रात्रि।